सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ग्यारह प्रतिमाओं में साधनारत रहकर आत्मकल्याण की भावना को प्रबल बनाते हुए इन सीढ़ियों के चढ़ने वाले श्रावक को नैष्टिक श्रावक यह संज्ञा सार्थक है, क्योंकि निष्ठा यानी दृढ़ता, निष्ठा यानी व्रतों में भावनाओं को दृढ़ बनाते हुए साधना में रत रहना, साधना मार्ग से नहीं डिगना, यह मार्ग यद्यपि बहुत सरल है, पर इस सरल मार्ग को हम समझ ही कहां पाए। ना समझे भगवान की इस वाणी को, या तो अति समझा या तो इति समझा। इस समझ के कारण श्रावक धर्म की परंपरा में एक शीतलाचार की परंपरा पैदा हो गई, सबकी सोच बदल गई। सबने यही सोचा कि प्रतिमाएं बहुत कठिन होती हैं, सबका विचार एक ही प्रकार का, और एक ने कहा कि कठिन है तो दूसरे ने भी कहा कि वास्तव में कठिन है, और ऐसे ऐसे कहते हुए एक जो लंबी कतार बन गई श्रावक धर्म आदि से लेकर अंत तक जैन समाज में, जैन परंपरा में एक लुप्त ही हो गया। ऐसा लोप क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम स्वरूप की जानकारी अच्छी तरह से लेने का प्रयत्न नहीं करते। संसार के जितने कार्य होते हैं बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेकर के प्रारंभ करते हैं, परंतु आत्मकल्याण के मार्ग का जो मार्ग संबंधित ज्ञान है उसकी जानकारी लेने का प्रयत्न भी नहीं करते, और दूर खड़े होकर वो तो बहुत कठिन है, वो तो पहाड़ है, हम यात्रा में जाएंगे तो क्या होगा, हमको बाहर जाना पड़ता है, वहाँ बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ बोर ही नहीं है, क्या होगा? हमारे यहाँ कुआं नहीं है, क्या होगा? पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या होगा? हम तो रोगी हैं, क्या होगा? और घर में कोई साथ नहीं देते हैं, क्या होगा? अनेकों अनेकों प्रकार की समस्याएं धर्म पालन के क्षेत्र में खड़े करके धर्म से दूर होते जाते हैं। वस्तुतः यह कर्तव्य नहीं है। दूर खिसकना धर्म से, आत्मा से, आत्मकल्याण से ही दूर खिसकना कहलाता है। जब आप अपने लड़के को मोक्ष मार्ग पर लगाने से पहले भौतिक शिक्षा देते हैं, स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, लड़का 7-8 साल का बड़ा हो जाता है, 5 साल में ही भेजा जाता है, पहली कक्षा में बैठ जाता है, बेटा स्कूल जाना, अब ये तो जाना ही पड़ेगा, निरक्षरी रहना ठीक नहीं, साक्षर होना, विद्या सीखना, ज्ञानी बनना, बुद्धिमान बनना, बड़े बनना, साहूकार बनना। तू साहूकार नहीं बनेगा तो हम लोगों का कैसा चलेगा? विद्यार्थी को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले भेजने वाले उनसे स्ट्रांग रहते हैं। तुझे जाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। वो कहता है, कब तक जाना मम्मी? तो देख, साल भर में 365 दिन होते हैं, स्कूल का यह नियम रहता है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना। तो मम्मी मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं किसी दिन खेल कूद में लग जाऊंगा तो उस दिन क्या होगा? तो उसके भी तो प्रश्न है, वो भी तो अति सोच रहा है ना। बेटा तो अति क्यों सोचता है? ऐसा मत समझ 365 दिन जाना ही पड़ता है। वो तो कॉमन बात है, कॉमन बात को तुम विशेष क्यों समझते हो? चल, जिस दिन बुखार आएगा उस दिन देखा जाएगा, वर्तमान का देख। तो एक भी कक्षा पास नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे व्यापार उद्योग भी करना कैसे आएगा? कोई लेटर आ जाए घर में उसको भी कैसे पड़ेगा? कुछ तो शिक्षण पाना पड़ेगा, कम से कम 10वीं कक्षा तो पास हो जा, 10 साल सीख। ताकि घर सल चल सके, हमारा हमारे व्यवहार चल सके, तुझे भी लाभ है, हम लोगों को भी लाभ है, चल जाना ही है, चल उठ, एडमिशन करके आ, हाथ पकड़ करके, नहीं भी आ रहा है तो हाथ पकड़ करके, उठा करके, स्कूल में एडमिशन दिलाकर, पैसा देकर, 1,000, 20,000, 1,00,000 पैसा देकर पढ़ाई कराते हैं बेटे की। बेटा कहता है 4 दिन के बाद, मम्मी ये तो खेलने को ही नहीं मिलता वहां। तो खेलना नहीं, कम खेलना, लेकिन पढ़ना, खेलना कम और पढ़ाई ज्यादा करना। खेलने को मना थोड़ी करते हैं, 1 घंटा छोड़ते हैं क्या? नहीं, 1 पीरियड खेलने के लिए भी रहता है, फिर स्कूल से आने के बाद और खेलना, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करना है। कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ करके बेटे को पढ़ाई पर लगा ही देते हैं माता पिता, और हम भी कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ करके ग्यारहवीं तक पढ़ ज्यादा नहीं सब अपने आप हो जाएगा। कॉलेज जा या न जा ग्यारहवीं तक तो पढ़। हाँ यहाँ डोनेशन के बिना ये समझ में आ गया ना उदाहरण अच्छी तरह से। हवा किसके ऊपर बह रही है वो तो मालूम होता ही है। वो बेटा अगर चार पांच के दिन के एब्सेंट से घबरा कर 365 दिन जाना पड़ता है, नहीं ये तो हमसे होगा नहीं, कभी कभी तो छुट्टी भी चाहिए मुझे। हाँ छुट्टी ले लेकिन जा, लेकिन पास तो होगा, एब्सेंट हो जाएगा तो फेल तो नहीं होगा, पास हो जाएगा। छुट्टी लेने से कोई फेल नहीं होता। एक दिन की छुट्टी, दो दिन की छुट्टी, एक दिन की पढ़ाई रुकती है, पूरा शिक्षण थोड़ी रुकता है। तो इसी तरह से साक्षर बनाने की कला हमारे लिए ये प्रतिमाएं सिखाती है। संयम के संबंध में आप साक्षर बनते चले जाते हैं। प्रतिमाओं को सरल बनाकर ग्रहण करना चाहिए। अपने क्षेत्र में सबकी प्रतिमाएं एक तरह से होती हैं ऐसा नहीं, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य को देखकर वह पुरुषार्थ करता है। मुनि भी अपने एक तरह से कोई भी पालन नहीं करते महाव्रतों को। बाहुबली भगवान एक साल तक खड़े रहे, कैपेसिटी थी क्या? हम भी सोचे बाहुबली भगवान को देखकर, हे भगवान बाहुबली भगवान तो एक साल तक खड़े थे, हमको कैसे संभव ये सब? क्या मुनि बनने से रुके? भगवान समझते हैं, अति मत सोचो और अति करने वालों को देख करके घबराओ नहीं कि ये भी करना पड़ता है। यहां शक्ति को देखकर चलना है, ये उपदेश भगवान ने मध्यम उपदेश दिया है। मध्यम मार्ग पकड़ने पर फिर बाद में सोचो मैं कितना कर सकता हूं। बाहुबली भगवान जैसा खड़ा रह सकता हूं क्या एक साल? बाद में सोचना। परंतु वह नियम है क्या? नहीं। आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही महाव्रत पालन करना है। आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति को देख करके अनुव्रत पालन करना है, प्रतिमाओं को पालन करना है। पर प्रतिमाओं के जो मुख्य मुख्य स्थूल नियम है उस स्थूल नियम को सामान्य नियम कहा है। सामान्य नियम को पहले दोहराया जाता है, इस प्रकार है। उसमें हम विशेष कितना कर सकते हैं और स्थूल को कितना निभा सकते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। ये नियम ऐसा ही होता है, ऐसा कहीं भी नियम नहीं होता, सिद्धांत नहीं होता। स्थूल नियम अलग होते हैं, सूक्ष्म नियम अलग होते हैं। पहले स्थूल नियम को ही दिया जाता है, फिर स्थूलता में सूक्ष्मता के रास्ते हम कितने चल पाते हैं अपनी शक्ति के अनुसार चलते हुए जाना होता है, और ऐसा ही करना चाहिए। मद्य मांस मधु को त्याग कर बेटा क्या नहीं खाना? मद्य नहीं खाना, मांस नहीं खाना, यानी क्या अर्थ है? शाकाहार से रहना। बेटा कहता है उस दवाई में तो ये डलता है, कैसा करूं? तो अति सोच रहा है, तू दवाई खा लेकिन पहला क्या छोड़? मांसाहार छोड़, शाकाहारी बन। और बाद में सोच के दवाई का क्या करना, पहला क्या बन? शाकाहारी बन। पहला क्या कर? होटल में जाकर, फाइव स्टार होटल में जाकर भोजन तो मत कर। फिर जब बीमार पड़ेगा दवाई के संबंध में सोचा जाएगा। बीमार पड़ने से पहले ही दवाई का सोचने लग गया। बीमार तो पड़ पहला, फिर बाद में देखा जाए कि कौन सी दवाई चाहिए पड़ती। दवाइयों के भी रास्ते हैं, उसमें कौन सा लागू हो सकता है? बीमार पड़ने पर ही रास्ता मिलेगा, उससे पहले कैसे मिलेगा? और यदि कोई दवाई लेनी पड़ती है तो दवाई तो दो प्रकार की है, शुद्ध दवा अशुद्ध दवा। शुद्ध दवा लेता है तो कोई भी प्रायश्चित नहीं, अशुद्ध दवा लेना पड़ा तो प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, स्थितिकरण है, ये सभी क्रियाएं। छेदोप स्थापना किसको कहते हैं? छेदोप स्थापना भी एक चारित्र है ना, किसका नाम है? और ये नवे गुण स्थान तक है। छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना, और छेद का मतलब क्या? जब दोष लगते हैं तभी तो छेद, जब दोष ही नहीं लगे तो छेद काय का? हर रोज प्रतिक्रमण करते हैं, वो छेदोपस्थापना के लिए ही तो करते हैं। मेरे व्रत कहीं अतिचार अनाचार इत्यादि के माध्यम से अतिक्रम व्यतिक्रम आदि परिणामों के कारण से कहीं विचलित हुए हों व्रत, हम उस स्थिरता से उस निष्ठा से घिरे हों, हे भगवान पुनः हम स्थितिकरण को प्राप्त होते। व्रतों के प्रति आदर भाव है और दोषों के प्रति हे भाव है। आदर भाव और यह हे भाव, यही तो छेदोप स्थापना है। हे भगवान मैंने छेद कर लिया हूं व्रतों को तो पुनः उपस्थापना को प्राप्त होता हूं। छेदो अट्ठावनम होद मध्यम, किसका? मूल गुणों का और उत्तर गुणों का कहीं भी छेद हो गया हो। छेद चार प्रकार से होता है, अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, अतिचार से और अनाचार से। चारों प्रकार में से कोई भी दोष आया हो, अनाचार दोष आया हो तो भी उपस्थापना हो, अतिचार दोष आया हो तो भी उपस्थापना हो, इस प्रकार उपस्थापना प्रतिक्रमण के माध्यम से, प्रायश्चित के माध्यम से हम करके पुनः यथावत हो जाते। नहीं 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 व्रतों से गिर जाऊंगा तो क्या होगा, गिरने से अच्छा है कि नहीं लेना ही अच्छा है, दोष लगता है। और ऐसा महादोष कौन लगाए, तो क्या व्रतों के बिना असंयम पूर्ण जीवन जीने से दोष नहीं लग रहा है, पाप नहीं लग रहा है, ये तो प्रति सेकंड लग रहा है। आप सब प्रकार की दवाई खा रहे हैं, व्रत लेने पर तो कदाचित एक आध दिन खाएंगे, यहां तो रोज भी खा सकते हो, तो क्या नरक नहीं जाओगे? इसका मतलब असंयमी रोज खाएगा तो क्षमा है, वो नरक नहीं जाएगा, और व्रती एक दिन खाएगा तो नरक जाएगा, ऐसा विधान कहाँ है? बेटा एक दिन अगर स्कूल से चूक जाएगा तो फेल हो जाएगा, कहाँ से नियम लागू कर दिया? और एक दिन चूकना भी अनाचार है, लेट होकर जाना अतिचार है, जाने की इच्छा नहीं करना यह अतिक्रम है, और उस जाने की नहीं जाने की इच्छा को बलवती करना ये व्यतिक्रम है, और ऐसा करते करते चले जाना लेकिन एक आध घंटे बाद जाना, एक पीरियड एब्सेंट हो जाना, ये अतिचार है, बिल्कुल नहीं जाना ये अनाचार है। तो इस प्रकार अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष भी लग गए तो क्या बेटा फेल हो जाएगा? आपने 1 लाख 2 लाख का खर्चा किया अपने बेटे के पीछे, सारे पैसा व्यर्थ हो जाएगा? जो कानून वहां है वही कानून धर्म के क्षेत्र में भी है। क्यों सोचते, सोचो तो अति, नहीं सोचो तो इति। जो बीच के रास्ते भगवंतों ने बताया है उसको समझने की चेष्टा ही नहीं करते। माता पिताओं ने क्या समझाया है, जिनवानी माता गुरु पिता और वो दादा, अभी तो कहा शुरुआत में। यही समझा रहे हैं, बेटा घबरा मत, आगे बढ़, साक्षर बन। 100% असंयम है, कुछ तो असंयम हटा दे, यही साक्षरपना। देश संयम भी साक्षरपना, एक देश साक्षर, इंजीनियर नहीं। ग्यारह प्रतिमाओं के माध्यम से 11 कक्षाएं पार करने का कोशिश हमें करना है। चलते समय भरसक हम सावधान रहेंगे कि दोष न लगे, फिर भी मजबूरी में कोई दोष लग गया, 4 प्रकार में से कोई भी दोष लगा तो प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, मार्ग है, प्रशस्त है, व्यवस्था है, सरल व्यवस्था है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ो, बड़े चलो। पार्श्वनाथ भगवान के हुक्म से बड़े चलो, महावीर भगवान के हुक्म से बड़े चलो, चलो बड़े बड़े चलो। सोचो नहीं, घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, जीवन को संयम पूर्ण बना लो। संयम पूर्ण जीवन ही साक्षर जीवन है, अन्यथा निरक्षरी। अब तो भय गया ना मन का, गया कि नहीं गया? अब प्रश्न उठाएंगे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। चल बेटा, ऐसा नहीं चलता है, इसमें तेरा भी हित है, मेरा भी हित है, और दादा परदादा का भी हित है। मार्ग की रक्षा, तीर्थ की रक्षा आत्मा में करना है। कोई भी श्रावक तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? ये रूखा सूखा मैदान रहेगा। आदिवासियों का जैसा नागरिकता रहित जंगल रहता है ना, वहां क्या नागरिकता है? उनको खाना मालूम नहीं, पीना मालूम नहीं, जीवन जीना मालूम नहीं, बैठना मालूम नहीं, रहन सहन कुछ मालूम नहीं, जिनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रहते ठीक से। वही आदिवासी नगर में कोल्हापुर में आ जाए और इन रोड़ों पर घूमने लग जाए तो कितना प्रभावित होगा। अरे हमारा जीवन कहाँ, निरक्षरी अनाड़ी लोग हम जंगल में रहते हैं और यहाँ देखो तो सही, इसने इतनी बिल्डिंग, डिजाइनदार बिल्डिंग, ऐसे स्वर्ग में रहते हैं ये लोग, ऐसे मकानों में, ऐसे बिल्डिंग में रहना तो स्वर्ग के समान लगता है। ये एक आदिवासी यहाँ आ जाए रोईकर कॉलोनी में, दंग रह जाएगा ये सब देख करके। और वो जंगल में बैठ करके सोचता है क्या मकान बनाना, ऐसा ही रहना चाहिए, क्या खाना, कुछ भी खाना चाहिए, कैसा भी रहना चाहिए, ऐसा कौन मकान बनाए, कौन परिश्रम करे इतना। तो ये नागरिक इतनी मेहनत कर, पसीना बहा करके तो मकान बनाए, आदिवासी को कठिन लगता है। नागरिक जाकर के वहां उनको शिक्षा दें, ऐसा नहीं जीना है आपको, आपको अच्छी तरह से मकान बना लेना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, रसोई घर अच्छी हो, रसोई अच्छी हो, ऐसा ही खाना, ऐसा ही पीना, ऐसा साफ करना, सिखाते हैं कि नहीं? नागरिक लोग ही आदिवासियों को नागरिक बनाते हैं क्या नहीं? आप सभी नागरिक हैं, घर भी व्यवस्थित हैं, स्टैंडर्ड एक क्वालिटी के, व्रत पालन करने के लिए तो ऐसे ही घर चाहिए, एक मक्खी भी भिन भिना नहीं सकती, ऐसा कितना साफ सुथरे हैं आज के घर। वास्तव में ऐसे ही रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र के पीछे दौड़ दौड़ कर आप लोगों ने घर सुधारा, ये बहुत अच्छा रहा। एक दृष्टिकोण से प्रकाश की कमी नहीं, वहां जंगल में जाकर के एक दिन देखो आदिवासियों की झोपड़ी कैसी रहती, छोटे छोटे गांव में जाकर के देखो, उधर बेलगांव साइड कहां वड्डे बैल जाकर के देखो, उनके घरों में प्रवेश कर रसोई घर तक जाकर के एक बार आ जाओ, जैसे रेलगाड़ी गुफा में जाती है ना, ऐसा अनुभव करके आओगे। आप उनसे कितने अच्छे हैं सिटी के लोग, सिटी के लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा घर ठीक नहीं, पहला घर सुधार करो, ऐसा उपदेश जरूरी नहीं। केवल खान पान, केवल दो बातें इनको कही जाए, ये प्रतिमाधारी बन सकती। एक पानी को संभाल के उपयोग करो और एक चक्की लाओ घर में, बस दो ही बातें, बाकी नागरिकता उपलब्ध है। और जरा प्रमाद छुड़ाना, नागरिकता में इतना ऊपर उठ के आने के बाद भी, इतना आदर्श जीवन पाने के बाद भी इनके लिए थोड़ा सा प्रमाद हो सकता है, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, या तो अति सोचता या तो इति सोचता, बस उतना छुड़ाना है। सिटियों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुशिक्षित रहते हैं, थोड़ा भी कहे तो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करने की कैपेसिटी देहातों में नहीं होती, वो दिन रात खेती करके उनका मन मिट्टी में मिलता है और मिट्टी मन में मिलता है। सोच, परिष्कृत सोच, विचार, ज्ञान, चिंतन, मनन वहाँ नहीं हो सकता। बहुत समझाना पड़ता है, मन की मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है। पहला वो मन में घुस गया है, मिट्टी में जाकर मिट्टी ही बन जाते हैं किसान, काम के नहीं रहते। बहुत समझाने पर भी इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। अगर यह चातुर्मास किसी देहात में हो गया होता तो 30 लोगों की संख्या सपने में ही देख सकती थी। वास्तव में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सिटियों में ही चातुर्मास सफल हो सकते हैं। अब सिटियों में ही चातुर्मास करना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सिटियों के लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ता, नागरिकता सर्वोत्कृष्ट होती है। छोटे छोटे गांवों में कह कह करके पसीना बहाते हैं तब भी वो समझ ही नहीं पाते। एक गाय में और एक भैंस में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों दूध देती हैं, दोनों उपकार करते हैं, ऐसी बात नहीं, हंसो नहीं। आप जब फाट जाएंगे तो किसके पास जाओगे? हाँ, हंसना नहीं, सभी काम की चीजें हैं। लेकिन कुछ शिक्षा देना चाहो दोनों को तो गाय जल्दी शिक्षा ग्रहण करती है, गाय के सामने बीन भी बजाओगे तो समझ जाएगी, भैंस के सामने शंख भी फूंकोगे तो नहीं। स्थिति है, लेकिन करे क्या, उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। गायें कम हैं, हाँ पानी में, नहीं ये क्यों ऐसा, एक शारीरिक कारण भी है उसमें, शारीरिक कारण। जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहा है क्या? नहीं, वास्तव में आप दूध भी पी करके देख लेना, प्रयोग करके देखना है। भैंस का दूध पीना, फैट अधिक है, शक्ति जरूर आएगी, आप पहलवान बन सकते हैं, मजबूत पहलवान। एक गाय को, गाय के दूध को पिला दो एक को, और एक को भैंस के दूध को पिला करके पहलवान बन, दोनों को पहलवान बनाओ, वो हार जाएगा ये जीत जाएगा। पहलवानों को फैट वाला दूध चाहिए, और जिनको पहलवान नहीं बनाना है, नागरिक बनाना है, दिमाग से काम लेना है, शरीर से नहीं। एक बैठे बैठे दिमाग से काम लेकर काम लेकर के करोड़पति बनता है, और एक शक्ति से काम करके, शरीर से काम करके लखपति भी मुश्किल से बनता है। देहातों में यही स्थिति है। आप एक दिन जाकर के खेत में कभी पसीना बहाया, आप करोड़पति क्यों? और इतना श्रम करने वाला, कष्ट करने वाला आज लखपति भी नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक नागरिक है, बुद्धि से काम लेता है, एक पहलवान है, शरीर से काम लेता है। शरीर से कहीं ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है, अपेक्षा है, एकांत नहीं, बुद्धि श्रेष्ठ। जहां शरीर की ताकत आवश्यक है, आवश्यक है ही, परंतु उससे कहीं ज्यादा बुद्धि आवश्यक है। बुद्धि अगर है तो कदाचित शरीर में शक्ति न हो तो भी चल सकता है, और शरीर में शक्ति है और बुद्धि नहीं तो जीवन नहीं चला सकते। शरीर को ही नष्ट कर देंगे, बुद्धि नहीं है तो। शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा महत्व बुद्धि को है, ज्ञान को है, सोच को है, चिंतन को है। इसलिए बुद्धिमान सदा सुखी रहता है और शरीरवान बलवान शरीरवान इतना सुखी नहीं हो पाता जितना बुद्धिवान सुखी रहता है। रहता है कि नहीं? बहुत सुखी रहता, क्योंकि जो सुख और दुख है ये बुद्धि के विषय हैं, शरीर के विषय नहीं। सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति ये शरीर के विषय हैं कि बुद्धि के विषय हैं? सुख की अनुभूति बुद्धि में होती है कि शरीर में? बुद्धि में। शरीर बलवान है और बुद्धि नहीं है तो सदा दुखी रह सकता है। दुखी ही ज्यादा रहेगा, निश्चित बात है। किंतु बुद्धिमान है तो दुखी होगा तो कभी कभी होगा। जिस समय दुखी होगा उस समय तुरंत सोचेगा कि मैं दुखी क्यों और सुख का मार्ग क्या। तुरंत सुख का मार्ग खोजने की कला भी उसके पास है, तुरंत सुखी होता है, तुरंत मार्ग खोज लेता है। पर शरीर का बलवान बुद्धि न रखने से तुरंत सुख का मार्ग खोज नहीं पाता। गाय बहुत जल्दी अपने रास्ते को खोज लेती है, कोई भी सामने से विघ्न बाधाएं आ रही हों तो गाय सावधान होती है, आने से पहले दूर से ही सावधान और किनारे हो जाती है। लेकिन भैंस तब तक किनारे नहीं होती जब तक कि विघ्न सामने नहीं आते। यहां बुद्धि ही काम कर रही है। भैंस कहती है तुम अलग हो जाओ, समझे मेरे को? भैंस अलग होने को राजी नहीं होती, गाय को तो होना ही पड़ेगा। उधर से गाय आ रही है और इधर से भैंस जा रही है, रास्ता कौन छोड़े? उसको ही छोड़ना पड़ेगा, उसको ही हारना पड़ेगा। ज्यादा हट करे तो देख इतने सींग लंबे हैं, चुप हैं, पेट में घुस गया तो क्या होगा? गाय दूर से ही समझ लेते हैं कि भैंस के सींग बहुत लंबे हैं और मेरे सींग तो इतनी इतनी सी छोटी। और ये रास्ता नहीं छोड़ रही है तो मेरा कर्तव्य क्या है, सोच लेती गाय, रास्ता छोड़ देती। कन्नड़ में एक कहावत है, वो क्या है? बहुत मजेदार, इसी को घटाया है उसमें। कन्नड़ में कहते हैं कि जान जान यानी बुद्धिमान, जान जान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी बुद्धिमान, जान जाननेगे एरडु दारि, और जान शब्द से विरुद्ध शब्द है कौन, कौन यानी क्वान, क्वान यानी भैंसा, जान यानी गाय, कौन यानी भैंसा या भैंस, जान जाननेगे मूरुदारी, मूरुदारी जान कोननिगे एरडु दारी, कोन कोननिगे वंदे दारी। ये क्या कहा, जान जाननिगे मूरु दारी, उधर से भी गाय आ रही है और इधर से भी गाय आ रही है, तो दोनों गायें होशियार हैं बुद्धिमान। एक गाय पहले से ही दूर से ही दूर दृष्टिकोण से ही अपनी रास्ता चुन लेती है, वो भी गाय है, उसके पास भी बुद्धि है, दूर से ही दूर दृष्टि से ही पहले से ही अपनी अपना रास्ता चुन लेती है, वो इधर हो जाती है या इधर हो जाती है। कितने रास्ते बन गए, तीन बन गए ना, एक आने वाली, ये जाने वाली, और बीच की रास्ता, बीच का रास्ता तो खाली हो गया। जान जान यष्टुदारी मूरुदारी, जान जाननिगे मूरुदारी, जान कोननिगे एरडुदारी, उधर से गाय आ रही है इधर से भैंसा जा रहा है, कौन रास्ता छोड़े, गाय ही छोड़ेगी, ये तो नहीं छोड़ेगी, ये तो नहीं बदलेगी उसी रास्ते से, तो रास्ते कितने हो गए, दो ही हो गए। और कौन कौन निगे वंदे दारी, उधर से भी भैंसा आ रहा है और इधर से भी भैंसा जा रहा है, दोनों आकर के सामने खड़े हो गए, कहने लगे कौन छोड़े रास्ता, तू छोड़। वो कहता है तू छोड़, ये कहता तू छोड़, और दोनों में टक्कर, मैं क्यों छोड़ू तू छोड़, तो दोनों लड़ते हैं, लड़ करके वहीं गिरते हैं, लेकिन रास्ता दो नहीं करते, तो रास्ते दो नहीं हो पाए, मरण के अंतिम समय तक रास्ते दो नहीं हो पाए, एक ही रास्ता रहा और उसी रास्ते में समाप्त हो गए। जीवन का मूल्यांकन मालूम नहीं है, जिसको जीवन का मूल्यांकन मालूम है वो रास्ता अपना चुन लेता है, दूर से ही देखकर यहां से बदल देता है अपना रास्ता। गाय को अपने जीवन का मूल्यांकन है, गाय जीना भी चाहती है, गाय के पास जीवो और जीने दो, धर्म है, और भैंसे के पास धर्म नहीं है, मैं जी लिया तो हो गया, कोई सामने वाला जिए ना जिए, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। महावीर भगवान ने किसको उपदेश दिया, गायों को या भैंसों को? जो गाय बनने की शक्ति रखते हैं और नहीं बन पा रहे हैं उनको उपदेश दिया है। बुद्धि है लेकिन अज्ञानता के कारण से बुद्धि कहीं अटकी हुई है, बुद्धि चल सकती है, विचारवान बन सकती है, तरल बन सकती है, सरल बन सकती है, आगे बढ़ सकती है, ऐसे बुद्धि को उपदेश दिया है। जो बुद्धि चल ही नहीं सकती उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। भैंस के सामने बीन बजाओगी तो एक दिन समझ पाएगी क्या, कभी 365 दिन साल भर में ठंड लिया आपने, एक ना एक दिन समझेगी किस संगीत पर है ये अपना बीन। तो भैंस निर्णय लेकर के तुम्हारी बीन बहुत अच्छी है किसी दिन कहेगी, सुनने के लिए राजी होगी, बहुत अच्छा है। गाय समझ सकती है, गाय शिक्षा पा सकती है, भैंस शिक्षा नहीं पा सकती। आ रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से आकर के बैठे हैं, और ये जो कहाँ जा रहा है उसको धारण करें, भूमिका मजबूत बनाई जा रही है। मध्याह्न में और चर्चा है, मध्याह्न में और आना है, मध्याह्न क्वेश्चन उत्तर होंगे, अभी तो प्रश्न आप पूछ नहीं पा रहे हैं। मध्याह्न में चर्चा है, जितनी शंकाएं हैं प्रतिमा के मार्ग पर बढ़ने के लिए, कोई भी शंका हो, बाधाएं हो, उनको रखना है, और यदि रास्ता खुल सकता है शंका समाधान होने पर तो खोलना है। दोपहर को भी आओ, आज एक ही दिन है, या तो कल एक दिन चलेगा, सारी शंकाओं का निवारण, कल के दिन चला ये दोपहर में, सारी शंकाओं का निवारण हो गया, सारे रास्ते खुल गए, मन हल्का हो गया, टेंशन उतर गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद भी यदि रास्ता नहीं खुलता है तो फिर आप तो टालने में लगे हुए हैं, ये समझा जा सकता है, प्रमादी बन रहे हैं ये समझा जा सकता है, हाथ में चाबी है, ताला खुल सकता है, लेकिन महाराज हाथ में जरा शक्ति नहीं है, लास्ट में ये कहें तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा प्रमाद करना नहीं है। आप गाय हैं क्या? क्या हैं? गाय ही। हम सिटी वालों को गाय समझते, छोटे गांव वालों को भी गाय समझते हैं, लेकिन अधिक संख्यक वहां ये नहीं मिल पाते जैसे यहां मिलते। सुशिक्षित लोग, विचारक, अनाड़ी अनाड़ीपना कहीं भी नहीं। ये क्या कहते हैं, ये सब हो सकता है क्या? ऐसे विचार किसी के मन में नहीं आते। ये क्या कह रहे हैं, आखिर हमारे जीवन में होता है क्या? नहीं, सोचने में लगे हुए। किसानों के विचारों को सुना है कभी? वो सॉफ्ट विचार वाले नहीं रहते विचार सॉफ्ट नहीं होता उनका, और विचार सॉफ्ट ना हो तो हमको घबराहट होती है कि अब क्या होगा इतनी मेहनत तो हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा समय व्यर्थ गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि अब क्या होगा, यहाँ तो भरोसा बढ़ रहा है हमारा कि ऐसा ना हो कि कोल्हापुर में 11 को पास करके कॉलेज में भी अटेंड ना हो जाए हो सकते हैं, क्योंकि विचारक है ना, डायरेक्ट कॉलेज में आने वाले भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का प्रश्न है, सम्यक दृष्टि और सम्यक्त्वी दोनों का फर्क समझाइए। कोई फर्क नहीं है। सम्यक दृष्टि यानी 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति। जब सम्यक तो कहेंगे तो वो गुण का नाम हो गया, या सम्यक दर्शन कहेंगे तो गुण का नाम हो गया, और सम्यक दृष्टि कहेंगे तो व्यक्ति का नाम हो गया, उस गुण को धारण करने वाला व्यक्ति। सम्यक्त्वी और सम्यक दृष्टि दोनों एक बात है, यानी व्यक्ति का नाम, जिसके पास सम्यक दर्शन हो उसका नाम सम्यक दृष्टि, और जिसके नाम सम्यक दर्शन न हो या सम्यक तो न हो तो उनका नाम, जैसे मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि पड़ता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के कारण यहाँ सम्यक दृष्टि पड़ता है। ये फर्क, अविरत सम्यक दृष्टि यानी अविरत, व्रत कुछ भी नहीं है किंतु सम्यक दर्शन गुण आया है जिसके जीवन में, वो अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक, जिसके पास 8 मूल गुण और 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन हो रहा है, उसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। कौन सा दोष लग रहा है? क्या आपने 8 मूल गुणों का स्वरूप अच्छी तरह से समझा है? हाँ, स्थूल रूप से है। उनका स्वरूप कैसे स्थूल रूप से है इसको समझा है? यदि समझा है तो आपका प्रश्न ही उठ ही नहीं सकता था, और नहीं समझा है तो पहले उसको समझो, स्थूल क्या चीज है उसका विचार करो, फिर उसका समाधान भी वहीं मिल जाएगा। प्रोषधोपवास, चौथी प्रतिमा, यानी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कम से कम एकासन करने का जो नियम होता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है। एकासन करना, एकासन अगर नहीं हो पाता है किसी दिन तो पानी दूध वगैरह ले सकता है, लेकिन प्राय करके एकासन करना चाहिए। ये एकासन का अभ्यास क्यों कराया जा रहा है यहां? यहां इसलिए कराया जा रहा है कल के दिन कॉलेज में जाकर के कंपल्सर वहां तो एक ही बार खाना पड़ेगा। कॉलेज का मीनिंग तो मालूम चल गया, इसलिए कॉलेज में जाने के बाद कंपल्सरी एक ही बार खाना पड़ता है, इसलिए यहां पर एक बार पानी पियो तो क्षम्य है, लेकिन कॉलेज का अभ्यास कराया जा रहा है इसलिए क्षम्य है, अभ्यास है इसलिए क्षम्य, परंतु एक बार खाने का ही अभ्यास रखना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी इन पर्व दिनों में पक्ष में दो वो आते हैं, एक अष्टमी और एक चतुर्दशी, इसमें एक ही बार खाने का नाम प्रोषध उपवास, ईशत उपवास यानी एकासन, ईशत उपवास यानी एकासन। प्रोषध कहते हैं एक बार को, प्रोषध यानी एक बार, उपवास यानी एक बार का उपवास करना और एक टाइम खाना यानी एकासन। ये जगन्य में आता है, पहले जगन्य ही बताना पड़ता है, क्योंकि वो तो वहीं ऊपर ही बैठे रहते हैं आती पर। पहले तो जगन्य क्या है ये बताएं तो सरल भी लगता है, हाँ ठीक है फिर। यदि ऐसा कहें अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो उपवास करना पड़ता है, अरे हमारे संभव नहीं है। ऐसी सोच बनती है, क्योंकि अभी तो बच्चे को पहले स्टैंडर्ड पहली कक्षा में प्रवेश कराना है, उसको तो ये बताना पड़ता है कि कुछ नहीं करना पड़ता है, वहां बैठ करके आना पड़ता है, पढ़ना भी नहीं पड़ता, ये कहना चाहिए। फिर जाकर के बैठने लग जाएगा तो अपने आप वह सिखाते सिखाते नहीं भी पढ़ना चाहो तो वहां पर पढ़ के आ जाएगा, सुन सुन करके अक्षर याद हो जाते, देख देख करके ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं टीचर, देख देख करके बच्चा सीख करके आता है। तो घर आने के बाद उस बच्चे से पूछो कुछ पढ़ के आया कि नहीं, तो तुम कह रही थी कि कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन हमको तो ये सब आने लगा, तो इसलिए तो कह रही थी माँ, कहती इसलिए तो कह रही थी, वो अपने आप आता है, पढ़ना नहीं पड़ता वहां। ऐसे कम से कम दूसरी प्रतिमा में प्रवेश कराने के लिए ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ता, एक आसन इतना तो करोगे, हाँ इतना तो हो सकता है, उपवास नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद एक बार तो खाना पड़ता ही है, वहां तो एक आसन कंपलसरी है। यहाँ पर फिर भी चल जाएगा, शाम को पानी पी लो तो भी चलेगा। ऐसा अति नहीं समझना प्रतिमाओं को, ये क्या है श्रावक धर्म, बहुत जैन धर्म कठिन है, जैन धर्म से छोड़ छोड़ भाग कर भाग रहे हैं। जैन धर्म जैसा सरल धर्म अन्यत्र कहीं भी नहीं, कठिन तो वो ही है, ये सरल है, उससे सरल है। समझे नहीं, वहां तो कुछ भी कराया जा रहा है और पगार कुछ भी नहीं, लास्ट में जीरो। वहां तो उपास कराया जा रहा है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा, यहां कोई कंपलसरी नहीं। शक्ति हो तो करना, नहीं शक्ति हो तो एक बार खाना और पानी पीना। सरल है कि कठिन है? वहां तो उपास कराया जा रहा है, ये व्रत ऐसा ही करना पड़ता है, ये व्रत ऐसा ही करना पड़ता है, नहीं तो व्रत ही नहीं। ऐसे कितने सारे व्रत हैं सोचो, कितने आप जानते हैं बाहर के वातावरण को, कितना कठिन है वहां। यहां फ्री में दिया जाता है, वहां पर पैसा भी लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? यहां आपको पूजा करना फ्री, देव दर्शन करना फ्री, व्रत लेना फ्री, कॉलेज में जरा भी यहां पर किसी भी प्रकार से डोनेशन नहीं है, वहां डोनेशन है। और डोनेशन लेकर लास्ट में क्या मिला? जीरो। वहां तो कंपलसरी नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? नमाज कंपलसरी करते हैं कि नहीं? कितना करेक्ट है वहां, यहां ऐसा कोई नियम नहीं, आप मंदिर जा सकते नहीं जा सकते। कौन सरल है मैं पूछ रहा हूं, जैन धर्म सरल है कि अन्य? इसको कठिन 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 लोगों से सुन सुन करके हैमरिंग हो गया है कि कठिन है कठिन है। संस्कार गलत आ गए, और जो सच्चा होता है ना उसके प्रति ही गलत धारणाएं जीव को ज्यादा बनती, वो इसलिए कि उसका पाप कर्म का उदय ही ऐसा रहता है। जो सच्चा होता है वो कठिन लगने लगता है, ये पाप कर्म का उदय। हालांकि भीतर जाकर के देखोगे तो अत्यंत सरल है, परंतु बाहर खड़े होकर के ही हम कठिन घबराते हैं ना, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। सच धर्म के संबंध में ही ऐसे विचार आते हैं, सच्चे व्रतों के संबंध में ऐसे हमारे विचार बनते हैं। नकली तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्यों? वहां पर बहुत लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी एक शामिल, एक भेड़ चला गया तो सब भेड़ उसके सामने। सोचते हैं कि इतनी भीड़ कर रही है तो हमारे लिए भी वो सरल होगा, और रहता है कठिन, पर उस कठिन को सरल समझ करके करते रहते हैं। और उतना कठिन यहां कुछ भी नहीं, यहाँ अत्यंत सरल है। अष्टमूल गुण सरल, प्रतिमाएं सरल, और बिल्कुल सच्चा, और फल गारंटी, फल गारंटी, टिकाऊ फिल्टर, प्योर ह्यूमन में डालने वाला पेट्रोल यहां मिलता है इससे। वहां उतना करके भी क्या पाओगे? समय हो गया।